जहां श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रश्न है, श्रीनाथ जी का प्रश्न है, वो विप्रयोगात्मक स्वरूप है। और विप्रयोगात्मक स्वरूप है, विप्रयोगात्मक स्वरूप ध्यान के लिए होता है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी ध्येय है। स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थितः। तो वह स्मरणीय स्वरूप है और ऐसा स्वरूप है कि उन्हीं में सभी का समावेश है। अन्य जो सात स्वरूप हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी को अपन ने गिन लिया। अब जो अन्य सात स्वरूप हैं, श्री नवनीत प्रिय जी, श्री मथुराधीश जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारकाधीश प्रभु, श्री गोकुलनाथ जी, श्री चंद्रमा जी और श्री मदन मोहन जी, ये सात स्वरूप जो हैं वो संयोगात्मक स्वरूप हैं। और संयोगात्मक स्वरूप ही जो हैं वो सभी स्वरूप श्रीनाथ जी के साथ एक ही भूत हैं, अलग अलग नहीं है। श्रीनाथ जी में ये सातों स्वरूप है और सातों स्वरूप में श्री गोवर्धन धारण है। इसलिए अपने इष्ट के रूप में तो श्री मथुराधीश, जैसे आपने पूछा है कि मेरा घर पहला है, तो इष्ट के रूप में श्री मथुराधीश ही होते हैं। लेकिन वो मथुराधीश प्रभु के साथ में श्री गोवर्धन धर प्रभु का स्वरूप भी साथ ही विद्यमान है, उनसे अलग नहीं है। तो जो इष्ट रूप का आराधन करना है वहां वो द्विदलात्मक स्वरूप है। द्विदलात्मक स्वरूप का मतलब है कि एक चना होता है, चने के अंदर एक छिलकी के अंदर दो दाल होती है, वो दोनों दाल जब मिल जाती हैं तभी वह एक चना कहलाता है। वैसे ही जो भगवत स्वरूप है वो संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक रूप से दो प्रकार से है, परंतु वो दोनों संयुक्त तो होते हैं तभी वो पुरुषोत्तम रूपता होती है और वही आराध्य है, वही इष्ट है। दूसरा इन्हीं का प्रश्न था कि मधुराष्टक की रचना कब और कैसे हुई। अनेक लोगों में वैसे अनेक विचार होते हैं, लेकिन मैं अपने एक विचार से विचारता हूं, मेरा स्वयं का विचार है कि आचार्य चरण के हृदय में किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी ग्रंथ की रचना करने की बात कभी नहीं आई। अपन लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ इसके लिए लिखा, ये ग्रंथ इसके लिए लिखा, लेकिन षोडश ग्रंथों में कई ग्रंथ ऐसे हैं कि जो किसी के लिए नहीं लिखे, जिनके लिए किसी का नाम नहीं है। तो वास्तव में वो ग्रंथ बतलाते हैं कि आचार्य चरण अपने विचारों को तो स्वांत सुखाए लिखते हैं, अपने ही लिए लिखते हैं, दूसरे के लिए नहीं। और अपने लिए लिखा हुआ जो होता है अपने स्वयं के रूप में, विचार के रूप में, वही वस्तुतः अपने विचारों का, अपने ज्ञान का निचोड़ होता है, सार होता है। किसी दूसरे को जब कहना होता है तो उस दूसरे की योग्यता देखकर, दूसरे की समझने की शक्ति का अनुमान करके उतना ही भाग समझाया जाता है, पूरा नहीं समझाया जाता। अधिकारी जैसा होगा, जैसा पूछने वाला होगा, उतना ही जवाब मिलता है। तो मधुराष्टक की रचना ऐसे ही अन्य स्तोत्रों की रचना तो निश्चित है कि स्वांत सुखाय है। अपने हृदय में श्री प्रभु का जो भाव आविर्भूत होता है वही भाव व्यक्त होता है आचार्यों की वाणी में। भगवत स्वरूप तो कई हैं, अनेक प्रकार के हैं, पर नामकरण जो श्री महाप्रभु जी ने किया है और जो वैष्णवों को पधराए हैं उनमें नामकरण के रूप में अगर देखें तो भी अलग बात है। भगवत स्वरूप का नामकरण जैसे कि अपन जानते हैं, अभी पूर्व में प्रश्न किया है, मथुराधीश, तो आचार्य चरण के हृदय में मथुराधीश का नाम कैसे आया? क्योंकि ये बात भी अपन जानते हैं कि मथुराधीश तो कंस था, मथुरा का राजा तो कंस था। श्री प्रभु ने तो वो मथुरा का राजा बना कभी स्वीकार ही नहीं किया। जब कंस को मार दिया तब आपको राज्यासन पर बैठाने की कही तो पुनः उग्रसेन को बैठा दिया। राज्य तो आपने स्वीकार ही नहीं किया, फिर अपन मथुराधीश संज्ञा जैसे दी है तो वो कैसे दी है? वो उन वैष्णव की भावना से तो नहीं दी है जिनके लिए स्वरूप पधरा रहे हैं। मथुराधीश संज्ञा जैसे दी है वो अपने हृदय में उठने वाली भावना के आधार से। जब श्री मथुराधीश प्रभु के स्वरूप का दर्शन आचार्य चरण करते हैं और उनके स्वरूप उनके हृदय अवकाश में जहां जिस भगवत लीला का अंकन हो जाता है, उनके चित्त में जो भगवत लीला की अनुभूति होने लगती है, वही नाम स्वतः मुख से निकला है। तो ये मथुराधीश जो नाम आचार्यों ने दिया है, चतुर्विंशति मूर्ति लक्षणानि जो हैं, 24 प्रकार के आयुधों के क्रम से शंख चक्र गदा पद्म कौन सा किस श्रीहस्त में है, कहाँ कौन से आयुध की स्थिति है, उससे भगवत नाम में और भगवत रूप में जो शास्त्र बतलाते हैं उनमें तो नाम दूसरा होता है। श्री मथुराधीश के जो आयुध हैं, जिन श्रीहस्तों में जो आयुध धारण किए हैं, उससे नाम दूसरा होता, और वो होता तो वो किसका होता? सगुणात्मक रूप श्री प्रभु का अवश्य होता, चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ स्थित भक्तों को कृतार्थ करते हैं, ब्रज की लीला में वो स्वरूप कैसे आविर्भूत होता? समय कम है और ये प्रश्न कुछ लंबा जा रहा है, तो संक्षेप में ही उस चीज को कहूं कि जैसे उस समय आचार्य चरणों के हृदय में कौन सी लीला का भाव जागृत हुआ, श्री मथुराधीश प्रभु के दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में ये भाव आया कि श्री प्रभु गोप बालकों को साथ लिए हुए ब्रज में गायों को चराने के लिए पधारे हुए हैं और वहां भूख लग रही है। भूख लगी तो उन्होंने अपने एक सखा को भेज दिया कि वहां श्री मथुरा जी के, वहां यमुना जी के घाट पर उनके बालुका में बैठ करके कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनके वहां जाकर के और भोजन सामग्री मांग लो, जो अपने यहाँ के आप भागवत की कथाओं में सुनते हैं छाक लीला, उन महर्षियों ने नहीं दी, तो फिर से आपने भेज करके उनकी पत्नियों से कहलाया और वो छाक लेकर के तुरंत ही चली आई, क्योंकि उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान था। ऋषियों के हृदय में कंस का भय था, ज्ञान तो उनको भी था, लेकिन उनके हृदय में कंस का भय था क्योंकि वहां केवल ज्ञान था, और उन व्रजभक्तों के हृदय में ज्ञान भी था, उसके साथ वात्सल्य होने से भक्ति थी, तो ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण था, इसलिए वो वहां से मथुरा की स्त्रियां छाक लेकर चली आई। इसलिए श्री आचार्य चरण ने मथुराधीश नाम दिया है कि जो मथुरा के लोगों के हृदय पर जो राज्य करता है राजा वही है, कंस नहीं है। तो ऐसे ही ये मथुराष्टक इत्यादि जिन स्तोत्रों की रचना हुई है, मैं यही मानता हूं कि आचार्यों ने अपने स्वांत सुखाए लिखी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसलिए ये सोचना निश्चित एक विचार है कि आचार्य चरण के हृदय में कौन सी भावना कब जगी, तो मधुराष्टक के रूप में तो जो आचार्य चरण को श्री प्रभु के दर्शन हुए हैं वो समय और स्वरूप कौन सा। मधुराष्टक उस स्वरूप के प्रत्यक्ष सन्मुख होने के समय रचा गया है ऐसा नहीं मानता हूं मैं, लेकिन उस स्वरूप की भावना को हृदय में अंकित करके किसी भी समय वो मुख से निर्सृत हुआ है, और वह स्वरूप है जो श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी, जो ब्रह्म संबंध की आज्ञा देने के लिए श्री प्रभु के सन्मुख अर्थात श्री महाप्रभु के सन्मुख जो स्वरूप से श्री गोवर्धन धर कलानाथ के रूप में पधारे हैं, वो कलानाथ षोडश कला संपन्न, चंद्रमा जैसे अपने हृदय को शांति देता है परंतु 15 कला होती है उसकी, 16वीं कला नहीं। ये बहुत गहन विषय है, परंतु इतना ही अपन समझ लें कि भगवान के उस पूर्ण स्वरूप को रस स्वरूप को देख करके हृदय में जो मधुरता का भाव उत्पन्न हुआ वही मधुरता का भाव उन्होंने वहां व्यक्त किया है। और इस स्तोत्र को अगर थोड़ा सा समझ लो, स्तोत्र की तो व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके स्वरूप को समझने के लिए इतना समझ लो कि इस स्तोत्र में मधुराधिपति शब्द का नाम कितनी बार आया, मधुराधिपति 8 बार है, तो ये 8 बार जो नाम मधुराधिपति का आया है उसमें केवल एक स्वरूप जो मैंने अभी कहा कलानिधि के रूप में कलानाथ के रूप में ऐसा नहीं, वो षोडश गोपिकानां मध्ये अष्टौ कृष्णा भवन्ति की स्थिति को आचार्यों ने स्पष्ट किया है, और उन 8 स्वरूप में जो रस रूप हैं जिनको मैं पहले अभी गिना चुका हूं पहले के प्रश्न में, उन 8 स्वरूप के भावना का एक साथ हृदय में अंकन है और उस मधुराष्टक का आवरण। एक केवल मात्र एक स्वरूप के लिए या एक भावना के लिए नहीं है, संपूर्ण भावना है उसमें। तो ये जो आठ रस की भावना है, उन भावनाओं के लिए अपन के हृदय में जो भाव उठते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो वो मधुरम 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 शब्द से कितनी बार कहा है उसमें, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 56। 56 की संख्या है, इसलिए आचार्य चरण ने अपने यहां पुष्टि मार्ग में ये इस 56 भोग का क्रम प्रारंभ किया है। वो मधुर रूप, वो मधुर रस जो रस स्वरूप रसराज को अर्पित किया जा सके वो क्या है, तो ये सामग्री भी प्रतीक होती है अपनी भावना का, अपने हृदय की उन भावों का, और वो 56 की संख्या में आचार्य चरण ने निर्दिष्ट किया है। इसलिए यहाँ ये आठ स्वरूप से तो मधुराधिपते कहा है और 56 बार मधुर शब्द का प्रयोग किया है। तो ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 इन दोनों को मैंने एक साथ ही ले लिया है। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि जिसके लिए मैं कल कुछ कह भी चुका हूं, वैसे कि विदेशों में रहने वाले लोगों के सामने एक बहुत अहम प्रश्न बार बार आता है कि वहां जो लोग रहते हैं वो लोग वहां जो उत्पन्न हुए हैं अपने बालकों के प्रति, इस चीज को नहीं समझा पाते हैं कि अपन को कहां किस मंदिर में जाना नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। जैसे अगर शिव का मंदिर है या माता जी का मंदिर है तो वहां अपन को क्यों नहीं जाना या क्या है उसका रूप, वो समझा नहीं पाते हैं। तो बात ही वही है कि किसी भी बात का निषेध होता ही इसलिए है कि वो समझा नहीं पाते या समझे हुए नहीं होते। लोक में कहा जाता है कि एक ही नन्ना 100 दुख हरे, एक बार ना कह देते हैं तो 100 बातों का जवाब अपने आप हो जाता है। तो इसलिए जब ये अपन नहीं समझ पाते कि अपन, पहली बात जो समझने की है वो ये है कि अपन किस स्वरूप का अपन ध्यान करते हैं, किस स्वरूप का आराधन करते हैं, पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम जिन्हें कहा है वो कौन है। वैसे इस प्रश्न की चर्चा में कल के वक्तव्य में कर चुका था शायद, अपन लोगों में जिस चीज की कमी होती है, जिस ज्ञान की कमी है, वह यही है कि अपन जिनका आराधन करते हैं, जिनको जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनके ही स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। और नहीं जानना ही एक कारण होता है कि अपन उस अपने अज्ञान को छिपाने के लिए निषेध माने ना कर देना एक जवाब अपन समझ लिए। किसी शास्त्र में कहीं भी ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि यहां जाओ वहां मत जाओ। उक्ति अगर ऐसी है भी तो वो शास्त्रीय उक्ति नहीं है, नीतिज्ञों की वाणी है। उन शास्त्रों के अनुसार अपनी नीति, अपने नियम को बतलाने वाले लोगों की वाणी है। शास्त्र वाणी में, आर्ष वाणी में और सामान्य व्यक्ति की वाणी में बहुत अंतर होता है। तो यहां जो निषेध है वो अपने द्वारा किया हुआ निषेध है कि अपन उसे समझते नहीं और समझाते नहीं, इसलिए न करना अच्छा है। किसी ने अपन से जब ये पूछा होता कि तुम जिस भगवान को मानते हो, जैसा कि मैं जानता हूं कि आगे एक प्रश्न में पूछा है, उस प्रश्न को भी मैं साथ ही ले रहा हूं कि पुष्टि मार्ग में तो बालक रूप में ही भगवान को मानते हैं। यही तो बात है कि पुष्टि मार्ग ने ऐसा क्या माना है जो समझाया गया है इस तरह से, या समझाया गया है इस तरह से। जो लोग समझाते हैं वो क्या ये समझे हुए हैं कि जिस श्लोक को वो लोग बोलते हैं सामान्यतः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, रोज बोलते हैं, तो क्या है वो? हर रूप में, हर स्वरूप में भगवान हो सकते हैं, ये प्रतीति होती है या नहीं उससे? कि भगवान अपने पिता भी बन सकते हैं, भगवान अपने माता भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं, संबंधी भी बन सकते हैं, तो क्या है ये? तो वो अपने बालक क्यों नहीं बन सकते हैं? जो पिताओं का पिता है, वो ही अवतरित होता है, अवतार की इच्छा लेता है। स एकाकी न रमते स द्वितीय में इच्छत, तो वही तो अवतरित होता है। और जब वह अवतरित होता है तो वह उसी समय में बालक भी है, उसी समय में युवक भी है, उसी समय में ज्ञान से परिपूर्ण वृद्ध भी है। एक ही समय में भगवान कृष्ण ने सभी लीलाओं का दर्शन कराया है ब्रज में। किसी ज्ञान से वो अपूर्ण है या सांदीपनी ऋषि के यहां जाकर के ही विद्या का अध्ययन करने से उनमें ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसी बात अगर मानते हैं अपन तो व्यर्थ है। क्योंकि सांदीपनी ऋषि के यहां कितने समय रहे, अगर इतना समय विचार लें तो अपन विचार सकते हैं कि वो कैसे कैसे उस चीज को पढ़ पाए जिस चीज को उन्होंने संक्षेप में, विस्तार में नहीं, अर्जुन को उपदिष्ट कर दिया। जिस ज्ञान का उपदेश वो करते हैं उस ज्ञान को पढ़ने का उनके पास समय कितना था, कितने समय में पढ़ा है ये वेद। तो भगवान के सामर्थ्य को अपन अपनी तुलना से जब देखते हैं तो उसमें निश्चित भ्रांति होती है। भगवान के स्वरूप को अपन अपने रूप में विचारने जाते हैं तो उसमें निश्चित भ्रांति होती है, भ्रम होता है। क्योंकि भगवान तो उसी समय में अपने माता भी हैं, उसी समय में अपने पिता भी हैं, उसी समय में अपने बालक भी हैं, सभी कुछ वो हैं। तो बाल स्वरूप क्यों नहीं होता, बाल स्वरूप की सेवा क्यों है, वो एक अलग प्रश्न है, उसको फिर कहेंगे। लेकिन यहां प्रश्न वो चल रहा है कि अपन किसी भी रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं, किसी भी रूप में अपन जब उन्हें मानते हैं तो मानते किस रूप को है? पुरुषोत्तम को। पुष्टि मार्ग में जो आराध्य हैं वो पुरुषोत्तम हैं। वो पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है जो सगुणात्मक रूप से अवतरित होते हैं, ब्रह्मा भी बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, शिव भी बनते हैं। वो तो निर्गुणात्मक स्वरूप है, गुणातीत है। सगुणात्मक रूप से वो अवतरित होते हैं और उसके बाद उनके तीनों कार्य, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उन तीनों रूप में वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से कार्यरत हो जाते हैं और संयुक्त रूप से सभी कार्य सभी करते भी हैं। जैसे कि मैं पूर्व में जो कह रहा था कि भगवान ने एक ही समय में तो यशोदा जी की गोद में सोकर के जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी दिखला दिया, तो ये क्या कोई सामान्य बालक की बात थी? नहीं, वो सामान्य बालक है ही नहीं। उसी ब्रज की लीला के समय में ही वो यशोदा जी के गोद में खेलने वाले छोटे बालक भी हैं, उसी समय वन में गौचारण कराने वाले गोपाल भी हैं, उसी समय में वृंदावन में रास करने वाले वृंदावन विहारी भी हैं, उसी समय में नंदराय जी को इंद्र के यज्ञ से विमुख करके गोवर्धन याग का प्रकार बतलाने वाले संपूर्ण वेद के ज्ञाता भी हैं, संपूर्ण कर्मकांड को उन्होंने एक तरफ रखवा दिया। तो उनकी उस स्थिति को अपन नहीं समझ पाते हैं सही रूप में, इसलिए अपन को ये प्रतीत होता है कि यहां जाए या वहां न जाए, अपने हृदय में अगर पुरुषोत्तम के स्वरूप की एक बार पहले दृढ़ता तो पैदा कर लो। अगर अपना हृदय दृढ़ हो जाता है तो कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कहते हैं ना कि चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता, तो वैसे भगवान के उस स्नेह से अपने को सिक्त तो कर लो, अपने हृदय में भगवान का वो एक बार प्रेम तो जगा लो, उस प्रेम से स्निग्ध हो जाओ तो कहीं भी जाने में आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति क्यों है कि अपूर्ण ज्ञान लेकर जाते हो, अधूरी समझ लेकर जाते हो, और अधूरी समझ लेकर जब जाते हो तो जैसे ये लाइट आंख में चकाचौंध पैदा कर देती है ना, वैसे ही केवल मात्र उसके बाह्य रूप से किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर से आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और मार्ग रास्ता भूल जाओगे। अगर उस चकाचौंध से बचने के लिए अपने पास कोई साधन है, वो साधन है अपना ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपन प्रार्थना तो कर देते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, पर विश्वास नहीं करते हैं कि अपन पुरुषोत्तम के उस स्वरूप को अपने हृदय में उस कठिनता से कठोरता से बैठा लें।
समावेश यहाँ नवरत्न ग्रंथ के रूप में आचार्य चरण कर देते हैं और नवरत्न के स्वरूप से इन संपूर्ण स्वरूप का श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश अपन को करते हैं, इसलिए श्री प्रभु चरण ने उनका ये नाम दिया है श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक। ये श्रीमद् आचार्य चरणों के इस नाम को कहा है आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने इस नवरत्न की व्याख्या को एक अन्य रूप में भी प्रस्तुत किया है, रत्न के रूप में इससे भक्ति के लक्षण भी बतलाए। एक एक श्लोक में उन्होंने किस प्रकार से जो मैंने दशविधा भक्ति बतलाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति जो अपन को शास्त्र उपदेश करते हैं और जो भक्तों के हृदय से निकली हुई प्रेमा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह दसवीं भक्ति इस रूप में जो भक्तों ने उपदिष्ट की है, महापुरुषों ने जो शास्त्रों में समझाई है, उन दसों भक्तियों को भी यहाँ इस नवरत्न ग्रंथ के माध्यम से आचार्यों ने उपदिष्ट की है, ऐसा अपने पूर्वाचार्य अपन को इसकी व्याख्या में समझाते हैं। संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में मैं उन दसों भक्तियों का प्रकार भी बतलाने का प्रयत्न करता हूँ, हालांकि समय कुछ आज अधिक ही हो गया है, परंतु विषय पूर्ण होता है तो थोड़ा सा और समय 15 मिनट का दे दें तो हरकत नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रथम श्लोक में जो निवेदितात्मक ही कहा, तो मैं पूर्व में बतला चुका हूं कि ब्रह्म संबंध जब अपन लेते हैं तो श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति दो प्राप्त करते हैं, तो यहाँ निवेदितात्म भी पद से आचार्यों ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो दो भक्ति यहाँ बतलाई। द्वितीय श्लोक में स्मर्तव्यम स्पष्टतः है, तो स्मरण भक्ति दूसरे श्लोक में बतलाई है। तृतीय श्लोक में प्रभु संबंध पद से सेवन बतलाया है, पाद सेवन। चतुर्थ श्लोक में कृष्ण साध कृत प्राणी, यहां प्राण शब्द से अर्चन भक्ति का विश्लेषण है। प्राण से कैसे है, क्या है, वो तो विस्तार की बात हो जाती है, तो अभी नहीं। पांचवें श्लोक में वंदन भक्ति बन, क्योंकि अतोन्य विनियोग, अन्य विनियोग, अन्य विनियोग जो है वह कुछ अंश दोष का विद्यमान है, यह बदलाव है, पाप सहित है जी, उसका कोई कार्य कोई बात अवशिष्ट है, और कहा गया है प्रणत देही नाम पाप कर्षण, तो वहां वंदन से प्रणत होने से वो पाप कर्षण हो जाता है, वो दोष दूर हो जाता है, अन्य विनियोग होने पर भी चिंता नहीं रहती, वह स्थिति वंदन भक्ति का प्रकार है। षष्ठ श्लोक, दास्य भक्ति को बतलाता है, क्योंकि साक्षीभूत रहना दास का कर्तव्य होता है। स्वामी ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन दास का कर्तव्य होता है। ये करने जैसा है या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं, ये बात वो नहीं सोच सकता। अगर ये विचारता है तो दास्य भाव नहीं है, उसे तो साक्षी रूप में रहना है, उसे भगवत आज्ञा का पालन करना है, स्वामी के आदेश का पालन ही सेवक का कर्तव्य है। तो दास्य भक्ति यहाँ वो साक्षी भूत में उस भाव से यहाँ दास्य भक्ति का निरूपण किया है। सातवें श्लोक में सख्य भक्ति, जो सख्य भक्ति कैसे होती है, सेवा कृतिर गुरु राज्या, सेवा करने के लिए गुरु की आज्ञा प्राप्त करो। गुरु की आज्ञा आप कब प्राप्त करोगे, जब गुरु में आपको विश्वास होगा। और विश्वास धर्म क्या है, सख्यता। मैत्री भाव, मित्रता विश्वास पर ही जीवित रहती है। जहां विश्वास टूट जाता है वहां मैत्री समाप्त हो जाती है। तो यह विश्वास जो है, सेवा कृतिर गुरु राज्ञा पद से आचार्यों ने यहां वह सख्य भाव सूचित किया। अष्टम श्लोक में निवेदन बतलाया है, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जब कर दिया तो तथैव तस्य लीला मानकर, भगवान की ये जैसी लीला, आत्मनिवेदन कर दिया, अब अपना रहा ही क्या। तो जैसी भगवान की मर्जी, यह भाव जब आता है तब आत्मनिवेदन का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो इस आठवें नौवें श्लोक में, अष्टम श्लोक में आत्मनिवेदन पर्यंत की नवधा भक्ति आचार्यों ने समझा दी। अब नवम श्लोक में सर्वात्म भाव पूर्वक शरणागति को समझाया है, जो प्रेमा भक्ति का मूल है। क्योंकि सर्वात्म भाव पूर्वक की गई शरणागति निर्गुणा बनती है। सगुण भाव जहां विद्यमान है वहां तो अलग अलग स्वरूप में अनुभूति हो जाती है, ये मत्स्य है, ये कच्छप है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये इंद्र है। वेद में ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से किस स्वरूप को प्रतिपादन किया है, वरुण से किसे कहा है, इंद्र से किसे कहा है, अगर वेद के अर्थ को विचारें तो वो सभी अर्थ ब्रह्म परक ही है। किसी दूसरे को नहीं कहा है वेद ने। उसी रूप में सर्वात्म भाव पूर्वक की जब अपन शरणागति स्वीकारते हैं तो वह निर्गुणा बनती है और वह प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार इन 9 श्लोकों में आचार्य चरण ने 10 विध भक्ति का उपदेश भी किया है। इस तरह संक्षेप में श्रीमद् आचार्यों की इस वाणी को थोड़े से अंश में समझाने का यहाँ इस चंपारण्य क्षेत्र में श्रीमद् आचार्य चरणों के सान्निध्य में उनके चरणों में जो अवसर प्राप्त हुआ उससे अपने आप को धन्य मानकर मैं अपनी इस संपूर्ण वक्तव्य को संपूर्ण वाणी को उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए अपने इस वक्तव्य से विराम देता हूँ।
समुपस्थित भगवती जन 2 दिन तो अपन लोगों ने श्रीमद् आचार्यों की वाणी पर यत्किंचित विचार किया। आज यह विचारा गया कि जो प्रश्न वैष्णवों के व्यवहार में उनके मस्तिष्क में उठते रहते हैं उनके विषय में कुछ विचार करें। इस विषय में जिन वैष्णवों ने कुछ प्रश्न लिखकर भेजे हैं उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनमें समय बहुत ही अधिक लगने की संभावना है अगर विस्तार से समझाएं। इसलिए अधिक विस्तार तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न काफी अधिक संख्या में है, एक ही दिन में इतने प्रश्नों का समुचित समाधान नहीं हो सकता। किसी ने कुछ सूचन मात्र दिए हैं तो उन सूचनों को मैं पहले जैसे ले लेता हूं। एक भाई ने पूछा है, यानी पूछा नहीं है, सजेशन दिया है, सूचन दिया है कि सभी वैष्णवजन सर्वोत्तम का, यमुनाष्टक का इत्यादि स्तोत्रों का पाठ तो करते हैं लेकिन अगर वो उसके अर्थ को भी समझें तो बहुत उत्तम होगा। ये तो निश्चित बात है कि पाठ अपन अपने आचार्यों की वाणी का जो करते हैं उस वाणी का, उन शब्दों का तो विशेष महत्व है ही, परंतु वो महत्व तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि उसके अर्थ की संगति, उस चीज को समझाना हो। इसलिए ये तो आवश्यक है कि उनके अर्थों को जानना चाहिए। एक बात पूछी गई है कि धर्म के आचरण की ओर बहनों का झुकाव कुछ अधिक होता है, पुष्टि मार्ग का ज्ञान भी बहनों में अधिक होता है, परंतु उनमें ज्ञान होते हुए भी लगता है ऐसा कि वो सही रूप में समझ पाई हैं या नहीं, क्योंकि दूसरे को वो समझा नहीं पाती। खुद आचरण करती हैं लेकिन वो क्यों करती हैं ये दूसरे को समझा नहीं पाती हैं। और ये बात तो सभी के लिए है, हर व्यक्ति को वह जिस सिद्धांत का पालन करता है, जिस सिद्धांत को मानता है, उसे जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। और एक बात जरूर है, किसी भी सिद्धांत को समझना हो तो उसके लिए शास्त्रकारों की एक उक्ति को जरूर ध्यान में रखना है। अगर जानना है, समझना है, तो जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, जानने की इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। नैषा तर्केण मदिरापनेया, केवल तर्क से किसी भी सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तर्क तो ऐसी वस्तु है कि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक स्थान पर किया जा सकता है। ये उस व्यक्ति के ज्ञान पर आधारित है कि आज कोई अगर चाहे तो दिन को रात में, रात को दिन में अर्थ में घटन करके बतला सकता है। ये तो उसकी तार्किक शक्ति की परीक्षा नहीं है। जानना है तो सही रूप में, सही स्वरूप में जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो जरूर ज्ञान होगा। तो बहनों को भी इस रूप में समझना है कि पुष्टि मार्ग अपन आचरण में लाते हैं, उसके अनुसार जीवन अपना निर्वाह करते हैं, तो उसे दूसरे को भी सही रूप में समझा सकें। समझाने का प्रकार, जानने का प्रकार सत्संग के माध्यम से आता है। और सत्संग की ऐसी स्थिति है, अनेक गांवों में तो सत्संग का क्रम बंद हो गया है, अनेक गांवों में सत्संग चलता है, तो जिन लोगों को अपन कहते हैं कि निवृत्त तर्षि रुपगीय मानात, ऐसे व्यक्ति दो या तीन बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यह सत्संग का प्रकार तो ज्ञान का वर्धन नहीं करता। ज्ञान अगर जानना है, समझना है, तो उसमें भाग लेना चाहिए। स्वयं जब तक सक्रिय नहीं होते हैं तब तक समझा नहीं जा सकता। सत्संग से संप्रदाय का ज्ञान होगा, जानने से ज्ञान होगा, जिज्ञासा से ज्ञान होगा। आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है तो उसे बतलाया जाए, जब पूछा जाए तो उसे समझाया जाए। तो जिन बहनों को, अपने बालकों को, दूसरे लोगों को, अपन किस मार्ग का आचरण करते हैं, संप्रदाय अपना क्या है, पुष्टि मार्ग अपना क्या है, ये अगर समझाते नहीं आता है तो उनको उसके लिए कुछ सक्रिय होना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग, जैसा कि मैंने कहा, ये तो माध्यम है ही, इसी के साथ साथ श्री वल्लभ विद्यापीठ के द्वारा एक परीक्षा का क्रम चलता है। जिस प्रकार पोस्टल एजुकेशन के रूप में या जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उस रूप में एक संपूर्ण पाठ्यक्रम चलता है, उसके प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में अगर भाग लें तो संप्रदाय क्या है, वो किसका आचरण कर रहे हैं, क्या वस्तु है, प्राथमिक स्थिति से उनको जानने की और समझने की उसमें पूरी गुंजाइश है। पुस्तकों के माध्यम से, छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से, छोटे छोटे लेखों के माध्यम से उसमें समझाया गया है कि अपन जिस चीज का आचरण कर रहे हैं वह क्या है। ऐसे ही एक प्रश्न है, भाइयों के करते बहनों की संख्या ज्यादा होती है तो भाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना। अब आपको प्रश्न सुन के ही हंसी आई तो हास्य के रूप में उत्तर दे दूं तो कोई हानि तो नहीं है। वैसे आजकल तो बहनें सभी क्षेत्र में भाइयों के बराबर चल रही हैं, तो इससे भाइयों की जवाबदारी अपने आप कम हो जाती है तो उनको समय जरूर मिलेगा। एक प्रश्न है, कि अपन ने ब्रह्म संबंध दीक्षा ली तो ब्रह्म के साथ संबंध हुआ है, जब ब्रह्म के साथ संबंध हुआ तो ब्रह्म संबंध लेवु या ब्रह्म संबंध लिधु, इस प्रकार शब्द का व्यवहार क्यों करते हैं? ये तो भाषा शास्त्र का प्रश्न है। प्रत्येक व्यवहार में ऐसा उपयोग है शब्द का। जैसे ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत उपनयन दीक्षा हो जाती है यज्ञोपवीत, तो इन सूत के उन तारों को कहते हैं जिसमें ब्रह्मण्यम नामक कापि काचित देवता तिष्ठति, उन सूत्र के तारों को, उन सूत्र के तारों का बहुत महत्व है लेकिन वो चर्चा अभी कर नहीं सकते। लेकिन जब उन सूत्र के तारों को यज्ञोपवीत कहते हैं या जनोई कहते हैं तो अपन सामान्य व्यवहार में बोलते हैं कि नहीं जनोई थई गई, तो जनोई तो लक्षणा से मतलब क्या है कि अपन ने कहा है, उससे तात्पर्य क्या कहा गया है वो कुछ बात अलग रूप से समझ में आती है। जैसे अपन लोग यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो यहाँ मध्य प्रदेश में अपन बैठे हैं तो यहाँ बुंदेलखंड है एक क्षेत्र। बुंदेलखंड में अगर आप जाएं तो वहां लोगों के व्यवहार को अगर सुने तो बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे अपन कहीं जाने के लिए निकले, अपने घर से अपन बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपन निकले, किसी ने अगर पूछ लिया कि वो भाई कहाँ हैं, तो एक व्यक्ति जवाब देगा कि जूती चल रही है। जूती चल रही है का मतलब यह कि वो जूता पहनकर निकल चुके, लेकिन वहां की भाषा की अलग सी विशेषता है, उसी शब्द के अर्थ को समझना है। इसलिए ब्रह्म संबंध लिधु या लेव कह देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्म संबंध उस दीक्षा का ही नाम है। उस दीक्षा को अपन ने, उस ब्रह्म संबंध वस्तु को, एक पदार्थ का अलग स्वरूप अपने मन में बैठा लिया है और उसलिए पूछ रहे हैं। जैसे कि जनोई थई गई, तो जनोई हो जाना का पूछने का मतलब यह है कि गायत्री दीक्षा हो गई। एक प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा और समझने जैसा प्रश्न है। मारू घर प्रथम घर नु छे, तो मारे दरेक स्वरूप मां दर्शन करती वक्ते श्री मथुराधीश नु ध्यान करवानो के श्री गोवर्धन नाथ जी नु, ने मारा इष्ट देव श्री मथुराधीश के श्री गोवर्धन नाथ जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। पुष्टि मार्ग के स्वरूप भावना को सही रूप में जानने और समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पुष्टि मार्ग में स्वरूप भावना जो इष्ट के रूप में अपन स्वीकार करते हैं, वह श्री पुरुषोत्तम की है। पुरुषोत्तम जिस स्वरूप को अपन कहते हैं, उस स्वरूप के रूप में अपन दो वस्तु विचारते हैं जो भक्ति शास्त्रों ने कही है कि भगवान का स्वरूप रस रूप है। श्री गोसाई जी ने इसका वर्णन, तो भावई रंकुरितम मही मृगदर्शाम में बहुत ही उत्कृष्ट रूप में किया है। सामान्य रूप में अपन इतना ही समझें कि भगवत स्वरूप के दो पक्ष होते हैं, एक विप्रयोगात्मक, एक संयोगात्मक।